بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک مہینے اور کچھ دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بہت خوشی ہو رہی ہے پھر سے آپ کے پاس ہوں، اور ایک بہت ہی خوبصورت سی صبح کا آپ کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ کیسے ہیں خرم بھائی؟
بالکل ٹھیک ٹھاک، میں بھی اپنی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور جو ہے بہرحال حسن زیدی ہمارے ساتھ دوبارہ زندگی میں ہمارے ساتھ واپس آ گئے، یہ سیر سپاٹے بھی گئے ہوئے تھے ہندوستان، ہم انہیں ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ بارہ پھر بھی ہمیں خوشی ہے کہ واپس آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے،
بہت شکریہ خرم، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سفر میں بہت ہی زبردست لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کشمیر میں ہمارا جانا ہوا اور وہاں پر بہت ہی زبردست لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ تصویریں انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگراموں میں دکھاؤں گا، اور اس سفر میں کوشش کروں گا کہ جو تجربات ہمیں حاصل ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں۔ تو چلتے ہیں پہلے
جی، پہلے جو ہے ہمارے پاس جو ہے، جیسے کہ ہم لوگ ہمارا پروگرام صبح زندگی جو ہے ہمیشہ جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کرتے ہیں، یا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خوبصورت سے فرمان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، مولا کائنات کا ایک خوبصورت سا فرمان ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پروگرام صبح زندگی کو آگے چلائیں گے۔
ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، تھوڑی پروگرام میں ہمارے آنے سے پہلے تھوڑی تبدیلی ہو گئی ہے، پتہ ہی ہے میرے لیے تھا یا کوئی خاص؟
جی ضرور آپ کے لیے تھا۔ اچھا، آپ جو ہے اس آپ خوش رہیں، اور انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ جو ہے ابھی آپ کے لیے مٹھائیاں بھی ہم لے کے آئیں گے یہاں پر، بالکل۔ اور بہرحال لیکن یہ ایک چیز بتاتے چلیں ہم آپ کو کہ اس سے پہلے کہ جو ہے بات ادھر سے ادھر نکل جائے، ہفتے کا موضوع جو ہمارا چل رہا ہے وہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج اس کا آخری دن ہے، تو آخری دن ضرور اس پہ جو ہے کمنٹ کریں، ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ جو ہے کل ہم نے اس کا نچوڑ جو ہے نکالا تھا، اور جو ہے اس کا صابر کانجی صاحبہ نے جو ہے پوری طرح اس کے اوپر جو ہے اس موضوع کے اوپر وضاحت کی تھی کہ کیا سبجیکٹ، کیا کس فیلڈ میں جانا ہے، کس سے پوچھنا ہے اور کس سے نہیں پوچھنا، کس کی بات سننی ہے، کس کی بات نہیں سننی۔ پڑھائی کے بات ہو رہی ہے کہ ایف ایس سی میں پری میڈیکل رکھنا ہے، پری انجینئرنگ رکھنی ہے، یا یونیورسٹی میں کس سبجیکٹ، تو اس کے اوپر اس سلسلے میں جو ہے ہماری فیس بک انشاءاللہ آن لائن رہے گی، اس پہ جو ہے آپ ہمیں کمنٹ دے سکتے ہیں۔
میرا معیارات بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے ہفتے کے دوران، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔
بالکل،
اور آج اگر آپ کے خیال میں کوئی نچوڑ اس کا نکل سکتا ہے، آپ کے یعنی ذہن میں جو چیز ہے وہ ہم لوگوں کو ضرور بتائیے گا، اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریے گا، یقیناً ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہے۔
اچھا حسن، آج جو ہے نا ہم لوگ اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ جو ہے مونگ پھلی کے کیا فائدے ہوتے ہیں، تو چلتے ہیں ہمارا جو سیب صاحب کا پروگرام ہے وہ ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس کے
صاحب ہیں کہ صاحبہ ہیں،
آواز ان کی جو ہے خاتون کی ہے، لیکن سیب جو ہیں وہ خود سیب صاحب ہیں، تو ہم لوگ ان کو سیب صاحب بول دیتے ہیں کبھی۔
جینیٹیکل پرابلم ہے، ایسے سیبوں سے پرہیز کریے آپ لوگ۔ بہرحال لیکن چلتے ہیں، یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
ناظرین السلام علیکم، آج مونگ پھلی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، مونگ پھلی فارسی میں اسے بادام زمینی کہتے ہیں۔ پروٹین کی بڑی مقدار کی اس میں موجودگی کی بنا پر اسے چنے، مسور اور لوبیا کی صف میں بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کے پھول زمین پر بڑھتے ہیں، لیکن اپنے وزن کی بنا پر زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھل زمین کے اندر نکلتے ہیں اور وہیں بڑھتے ہیں۔ پھل کا باہری چھلکا ہلکا کتھئی ہوتا ہے، جس کے اندر کبھی دو اور کبھی تین دانے ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی کے 100 گرام دانوں میں 50 گرام چربی اور 16 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ بدن کو بہت زیادہ انرجی فراہم کرتے ہیں۔ اس میں عمدہ قسم کا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ خشک میووں میں اگر مونگ پھلی کا حساب کیا جائے تو اس میں پروٹین سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 100 گرام مونگ پھلی کے دانوں میں 25 گرام پروٹین ہوتا ہے، اس لیے بچوں کی نشو و نما میں یہ بہت موثر ہے۔ اس میں موجود تیل یا چربی بہت زیادہ مفید چربی ہوتی ہے۔ مونگ پھلی کے دانوں میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو خلیوں کی حفاظت میں بہت موثر ہیں، اور جسم کے حفاظتی نظام کو تقویت دیتے ہیں۔ چونکہ قیمت بہت کم ہوتی ہے ہندوستان اور پاکستان وغیرہ میں، تو اس لیے عام طور سے اس کا استعمال اگر بڑھانے کی ہم بات کریں تو آپ برا نہ مانیے گا۔ مونگ پھلی سے تیار کیا گیا مکھن اگر تازہ ہو اور اچھے کارخانے میں تیار کیا گیا ہو تبھی استعمال کیجیے، ورنہ یہ آپ کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ इसका तेल अलबत्ता खानों में भी इस्तेमाल होता है, यानी खाना पकाने में। तो अगर ये तेल आपके पास है तो इस बात का ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा एनर्जी फराहम करता है, इसलिए आपको मोटा भी कर सकता है, तो तेल का इस्तेमाल कम करें। यूं भी तमाम खानों में कोई भी तेल हो उसे कम ही इस्तेमाल करना चाहिए।
जी नाज़रीन, फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। 7:37 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक, और आप तेहरान स्टूडियो से ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी। आज भी हम लोग फेसबुक पर पूरे तौर से मौजूद हैं, और आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान। बेहतरीन तरीका यही है, कोई ख़र्चा भी अलग से नहीं है मेरे ख्याल में, बस बिजली का पैसा थोड़ा बहुत आप लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों की खातिर इतना आप लोग कर लीजिएगा। चलते हैं मेहमान के पास, और खुर्रम भी तैयार हैं गुफ्तगू को आगाज़ करने के लिए। जी खुर्रम भाई।
जी बहुत शुक्रिया हसन जी। बिल्कुल, हमारे मेहमान जो हैं वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं हमारे प्रोग्राम की, और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम, आज की गुफ्तगू भी जो एक बड़े अहम मौजू पर डॉक्टर जावेद हमारे साथ करेंगे, डॉक्टर जावेद अख्तर जो है वो आपको पसंद आएगी और अपने मुफीद साबित होगी। डॉक्टर साहब ने आज हमें बताया कि वो हमारे साथ आज बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में, और बड़ी अहम बीमारी है। तो चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं और देखते हैं डॉक्टर साहब हमें क्या आज बताएंगे। सलाम अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर जो है आपने टाइम दिया हमें प्रोग्राम में। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद हुसैन अख्तर साहब, हेपेटाइटिस ए के बारे में आपने कहा कि आप आज बात करेंगे, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस है क्या, पहले तो बताएं।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी व अहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सबसे पहले तो मैं तमाम सहर टीवी के स्टाफ का बहुत ममनून हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हेपेटाइटिस एक्चुअली जो होते हैं ना, हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी जिगर का उसमें उसको वर्म हो जाना, उसमें इल्तहाब आ जाना, सूजन हो जानी।
अच्छा।
जी जिगर का। और हेपेटाइटिस जो है इसकी 5 किस्में हैं जी, जिसमें हेपेटाइटिस ए है, बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, और ई तक हैं।
ठीक है।
तो हेपेटाइटिस ये तमाम जितने वायरल डिजीज़ है जी, हेपेटाइटिस ए इज़ द वायरल डिजीज़, और इसमें जो वायरल हेपेटाइटिस, इसीलिए इसको कहते हैं कि वायरस ए जो है वो अटैक करता है जी।
वायरस ए जो है, खास किस्म का एक वायरस है, वो अटैक करेगा।
जी जी। और इसके रोनुमा होने के जो चांसेस हैं हेपेटाइटिस ए के, वो ये है कि स्पेशली ये उन इलाकों में होती है जो पुअर इलाके हैं, जिसमें हाइजीनिक जो सिस्टम, जो सफाई का ज़्यादा नहीं है, या गंदा पानी पीने से, कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, आलूदा पानी पीने से हो गया, या कोई ऐसी डाइट जिसमें दूध है, ठीक है, जो ठीक नहीं है, उसकी सफाई ठीक नहीं है, वो पीने से हो सकता है जी।
ठीक है।
दूसरे नंबर पर इसके जो मेन जो इसका सोर्स है फैलने का, वो जो ओरोफिकल, एक तो ये मैंने कहा जी एक मुंह के ज़रिए, यानी गंदा पानी पीने से, गलत सही डाइट ना खाने से जी, गजा लेने से। दूसरा है इसका फीकल जो इसका सोर्स है फैलने का, वो ये है कि इंसान जब वाशरूम जाता है, टॉयलेट जाता है, तो हाथ नहीं धोता जी।
ठीक है।
उससे ये मुंतशर होता है जी, फैलता है जी।
सही है। अच्छा ये भी हो सकता है कि जो सीवरेज का पानी है जी, वो जी, पीने के पानी में मिक्स हो रहा है कहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हो सकता है जी। यही तो होता है जो ऐसे
ऐसे इलाके
एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश है, हजूम है,
पुराना सिस्टम है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट जी, इसमें कोई शक नहीं है। वही चीज़ें तो बहस बन रही हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना है।
ठीक है।
सैनिटेशन के हवाले से, बहदाश्त के, यानी सफाई के हवाले से, जी सफाई सुथराई के हवाले से, यही चीज़ें होती है जो हमें इन चीज़ों से बचा सकती हैं जी।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए जो है उसकी 3 फेजेज हैं, ये फेजेज क्या हैं, क्या मतलब है इनका?
इसमें ये है कि हेपेटाइटिस ए जो है एक्चुअली इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, यानी इसकी जो अलामत हैं, वो 3 फेजेस या 3 मरहल पर मुश्तमिल है।
अच्छा, ठीक, सही।
जी इसमें जो एक फेज है वो ये है कि उसको बोलते हैं जी इक्टेरिक फेज या प्रोडोमल फेज।
अच्छा।
इक्टेरिक फेज का मतलब ये है प्री इक्टेरिक फेज, सॉरी
प्री इक्टेरिक से पहले
के। जी जी, प्री इक्टेरिक फेज या प्रोडोमल फेज या वो मरहला, उसका मतलब ये है कि इसमें जॉन्डिस, जो जिसको हम बोलते हैं पीला यरकान,
ठीक है,
पीला यरकान होने से पहले इस फेज में, प्री इक्टेरिक में, जो कि 1 से 2 हफ्तों पर मुश्तमिल है, उसमें जॉन्डिस यानी पीला यरकान होने से पहले कुछ अलामात रोनुमा हो जाती हैं।
ठीक है।
ठीक है जी। अब वो अलामात जो हैं वो ये हैं कि एक तो उसमें ये आता है कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं,
ठीक है,
यानी फ्लू लाइक इलनेस होती है, जिसमें फ्लू लाइक इलनेस मीन्स इसमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपको पेशेंट थक जाता है, थकावट होती है, मैलेज होता है, पट्ठों का थक जाना, खस्तगी होती है जी, ठीक है, सर दर्द होता है इसमें,
ठीक है।
और इसके अलावा आपके लिए अर्ज़ करूँ जी, बहुत सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिसमें इसमें माइल्ड फीवर हो जाता है जी, माइल्ड फीवर 100 से 102 तक फारेनहाइट तक होता है, जिसमें हल्की हल्की चिल्स होती हैं, राशा होता है, कपकपी सी होती है,
ठीक है
जी। उसके साथ इसमें एब्डोमिनल पेन होता है जी, पेट में जो दर्द होता है, पेट का दर्द, इसका जो स्पेसिफिक एरिया है, एक तो वो होगा कि राइट अपर क्वाड्रेंट जो आपका दाएं तरफ है उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है,
यानी ये धड़ जो है
जी
धड़ के दाएं साइड पे ऊपर वाले हिस्से में, अगर चार हिस्सों में हम तकसीम करें
जी
तो उसमें जो दाएं साइड पे ऊपर वाले हिस्से में दर्द होगा
जी, एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे इसका जो एरिया है वो एपिगैस्ट्रिक, यानी ये जो हमारा स्टमक है, जो मैदा है, मैदे के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जहाँ उसका पाइलोरिक होता है,
ये जो यहाँ पर जहाँ जो हड्डी खत्म होती है, हड्डी खत्म,
एग्जैक्टली बिल्कुल, ये एपिगैस्ट्रियम, ये दो इंडिकेशंस हैं इसकी जी,
ये पहले फेज की,
ये पहले फेज की हैं जी, प्री इक्टेरिक फेज या प्रोड्रोमल फेज जी।
डॉक्टर साहब, प्री इक्टेरिक फेज, पहली फेज, तीन फेजेस आपने बताई, तीन जो है तीन किस्म की अलामतें अगर हम इस तरह कहें तो हमारे पास हैं हेपेटाइटिस में, बाकी अलामतें जो हैं बाकी दो फेजेस जो हैं
वो बताएं खिदमत में आज करता हूं
जी, उस पे बात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, यहां छोड़ सा हमने एक वक्फा लेना, माजरत के साथ चलते हैं हसन के पास और देखते हैं हसन हमें कहां पे लेके जाने।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू आप लोगों की जा रही है, मैं ज्यादा इसमें दखल नहीं दूंगा और जल्दी से ऐलान करता हूँ कि चलते हैं एक दास्तान देखते हैं, बादशाह और दाना, चलते हैं एक इसको देखिए, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बाकी गुफ्तगू करेंगे जी। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन जी, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत दास्तान आप लोग मुलाहिज़ा फरमाई। डॉक्टर जावेद हुसैन अख्तर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाज़रीन, और उनके साथ हमारी हेपेटाइटिस ए के पर गुफ्तगू चली। डॉक्टर साहब, एक फेज़ प्री एक्टेरिक जो अलामतों की, उसकी एक तीन आपने कहा तीन हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा जो है जिसको कहा जाए प्री एक्टेरिक, उसके आपने जो है अलामतें भी हमें बता दी। अच्छा, दूसरी फेज़ क्या है
जी? दूसरी फेज़ इसमें आती है इक्टेरिक फेज़,
ठीक है
जी, पहले तो प्री इक्टेरिक था, ये इक्टेरिक फेज़ है जी। इक्टेरिक फेज़ जो होता है ये वो 1 से 2 हफ्तों तक मुश्तमिल था जी, इसमें 1 से 2 हफ्तों के बाद, ठीक है, पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जॉन्डिस जो है पीला जरकान वो उसमें डेवलप हो जाता है जी।
अच्छा,
हाँ जी, तो इसलिए कहते हैं ना कि शुरू में ही ट्रीटमेंट या उसकी केयर करनी चाहिए ताकि हम नेक्स्ट फेज़ में ना जाएँ,
ठीक है।
तो जब जॉन्डिस हो जाता है, इस फेज का एक ये फायदा है कि जॉन्डिस तो अब हो गया जी,
ठीक है,
पेशेंट डॉक्टर के लिए भी कंफर्म हो गया कि ये पीला जरकान है,
ठीक है।
इसमें जो पहले फेज की जो अलामत जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, वो मैलेज है, आर्थ्रेलजिया है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, सर दर्द है, बुखार है, वो इसमें सारी सिम्टम्स जितनी भी अलामत हैं वो इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है,
बेहतर हो जाएगी दूसरी फेज में।
दूसरी फेज में रह जाता है सिर्फ जॉन्डिस,
ठीक है,
फिर जॉन्डिस को ट्रीट करता है जी, या इसकी जो बाकी जो है प्रिवेंशन है, मैनेजमेंट है, जो भी है उसको हम करते हैं,
ठीक है।
सॉरी, तीसरी फेज जो है वो कन्वालिसेंट या उसको रिकवरी फेज बोलते हैं,
ठीक है।
रिकवरी फेज में ये होता है कि इसमें पेशेंट जो है वो अपने आप को अच्छा महसूस करता है जी, पेशेंट रिकवर होना, बहाल होना शुरू हो जाता है अपनी नॉर्मल हालत की तरफ,
ठीक है।
पेशेंट में जो है एक सेंस ऑफ वेल बीइंग, उसको एहसास होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, उसको जो एनोरेक्सिया होता है, जो भूख नहीं लगती, वो भूख उसको लगना शुरू हो जाती है, ठीक है,
ठीक है।
हाँ, उसमें जो एक बिहेवियरल चेंजेस होती हैं वो उसकी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं जी ऑटोमेटिकली जी। तो ये जो है इसमें ये होता है कि पेशेंट अच्छा महसूस करता है जी,
ठीक है। ये तीन फेजेस जो हमारे पास आ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे जो है इसको डायग्नोज, इसको पहचाना कैसे जाता है, कैसे आप लोग जो है हॉस्पिटल में या कैसे एक शख्स जो है उसको पहचाने कि मुझे जो है हेपेटाइटिस हो गया
जी? भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने की जी। इसमें यह है कि इसकी जो इसको कैसे डायग्नोज किया जाए, इसको तशखीस कैसे दिया जाए, इसके लिए कुछ एक छोटा सा स्टेज है जी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। सबसे पहले तो ये है कि आपने इसमें जो LFT हैं, जो लीवर फंक्शन टेस्ट इनको बोलते हैं, जो जिगर के एंजाइम्स हैं जी,
अच्छा
जी, उनका टेस्ट करना है। लीवर LFT में आ जाता है जी, सबसे पहले तो आपने बिलीरुबिन इसकी चेक करनी जी,
ठीक है।
बिलीरुबिन इसकी बिलीरुबिन तीनों उसकी चीज़ें कैटेगरीज आप चेक करेंगे, टोटल भी चेक करेंगे जी, डायरेक्ट भी चेक करेंगे और इनडायरेक्ट भी।
अच्छा, यानी बिलीरुबिन एक मादा है जो हमारे पास लीवर के अंदर होता है,
एग्जैक्टली
उसको हम चेक करेंगे,
उसको चेक करेंगे, बिल्कुल यू आर राइट जी। उसके साथ ये कि टोटल में एक तो यह है कि ये 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ये शो करती है,
ठीक है।
नॉर्मल जो थी वो लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है,
ठीक है, बिल्कुल सही।
सॉरी, उसके बाद आता है जी बिलिरुबिन के बाद आ जाता है इसमें LFT के जो फंक्शन टेस्ट है, ALT आ जाता है जी, इसके एंजाइम्स हैं. ALT जो है
लिवर के एंजाइम,
लिवर के एंजाइम है, जिसका दूसरा नाम SGPT भी बोलते हैं उसको जी. फिर जी AST आ जाता है इसमें, SGOT उसको बोलते हैं जी, ठीक है. अल्कलाइन फॉस्फेटेज आ जाते हैं, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्पेसिफिक टू लीवर भी हैं, और कुछ SGOT जो है वो कुछ कार्डियक से भी रिलेटेड होता है,
दिल से भी उसको ताल्लुक है.
जी जी जी, ये चेक करना है आपने. और ये तमाम के तमाम हाई होते हैं जी.
अच्छा ठीक है,
ये हाई होते हैं
हेपेटाइटिस एम,
हेपेटाइटिस एम. इसके साथ आपने प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जी. PT जिसको बोलते हैं, वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन उसका शो करता है जी. उसमें उसका मतलब ये होता है कि जब PT आपका प्रोलॉन्ग आ रहा है, तो हमारा जो केस है वो एडवर्स फेज की तरफ जा रहा है, यानी अच्छी डायग्नोसिस उसकी प्रोग्नोसिस नहीं है.
अच्छा ठीक,
ट्रीट किया जाए,
गड़बड़ हो रही है,
गड़बड़ हो रही है जी. एक्जेक्टली
सही, ठीक.
उसके साथ आपने यूरिन एनालिसिस करना है जी,
ठीक है.
यूरिन एनालिसिस में आपने बिलिरुबिन को चेक करना है जी, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन छोटे पेशाब में आ रही होती है जी.
ये वही बिलिरुबिन है जो लिवर से निकल गया.
हां जी, जब वो जैसे ही उधर इंक्रीज करेगी, इधर से ये आना शुरू हो जाएगा,
पेशाब में भी ज्यादा
आना शुरू हो जाती है जी. एक्जेक्टली बिल्कुल जी. तो बिलिरुबिन यूरिया को भी हमने कंट्रोल करना है जी,
ठीक है. ये चेक करनी है,
एक्जेक्टली बिल्कुल,
ठीक है, सही.
साथ आप CBC करेंगे जी, कंप्लीट ब्लड काउंट. उसमें आपने वाइट ब्लड सेल को देखना है, वो नॉर्मल भी हो सकते हैं, उसमें लेस या हो सकते हैं, उसका ज़्यादा भी हो सकते हैं.
सही. अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे जो है, एक तो हम कहते हैं कि इलाज, और एक हम कहते हैं मैनेज करना.
जी जी,
कैसे इस बीमारी को मैनेज किया जाता है?
जो होता है ना ट्रीटमेंट, वो तो सिर्फ ट्रीटमेंट आ जाता है, चाहे ट्रीटमेंट मेडिसन का आ गया, ये वो. मैनेजमेंट में हर चीज़ आ जाती है. मैनेजमेंट में एक तो ये आ जाता है कि आपने पेशेंट को घर में ट्रीट करना है या हॉस्पिटल में ट्रीट करना है जी. उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव है, मेडिसिन के वाले से है, या उसकी डाइट कैसे है जी.
सही है, नफसियाती तौर पे उसकी किस तरह मदद करनी है,
हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो हेपेटाइटिस ए के लिए रिलेटेड है, वो सबसे पहले तो ये है कि आपने पेशेंट को बेड रेस्ट देना जी.
ठीक है,
बेड रेस्ट में यानी पेशेंट को आप घर ट्रीटमेंट कर सकते हैं.
ठीक है,
इसका ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव है जी.
ठीक है,
सपोर्टिव. इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसमें ये है कि आप सबसे पहले पेशेंट को उसमें जो है ना, आप उसको ग्लूकोज दें जी.
ठीक है
उसको ग्लूकोज दे दें. उसको दूसरे नंबर पे आप जो शुगर केन का जो जूस होता है, गन्ने का रस जिसको हम बोलते हैं, गन्ने का रस दें. ठीक है ना, तो वो पीले जरकान के लिए वैसे भी बेटर है, बिलिरुबिन के ऊपर इफेक्ट करता है जी. अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए कुदरती ऐसी अशिया हैं, दवाई है जिसमें बहुत ही तासीर रख दी है अल्लाह ताला ने जी. उसके साथ आप उसको उनको और बहुत सी मैनेजमेंट हैं जी, ठीक है, वो आप उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जारी रखेंगे गुफ्तगू को. छोटा सा वक्फा यहाँ पर लेना है, चलना है हमने हसन के पास, देखते हैं हसन हमें क्या लेके जा रहे हैं. जी हसन,
हमारे साथी जो हैं उन्होंने तैयार किया है एक वीडियो क्लिप, तो चलते हैं वो देखते हैं नाजरीन, और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. जी नाजरीन, आपने एक खूबसूरत सी वीडियो क्लिप देखी, मनाजिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. चलते हैं खुर्रम के पास, वो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. हम बहुत ही दो तीन अहम मसाइल आपके खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं हमारे साथ आज के प्रोग्राम में, यानी बाकी प्रोग्राम भी ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा. चलते हैं खुर्रम के पास.
बहुत शुक्रिया हसन जी. बिल्कुल डॉक्टर जावेद हुसैन अख्तर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारी बात हो रही है हेपेटाइटिस ए के बारे में. आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक जो है हसन के पास ऑनलाइन है, आप सवाल जो है अपना कमेंट की सूरत में या इनबॉक्स में हमें भेज सकते हैं. डॉक्टर साहब, जो है मैनेजमेंट की बात हो रही थी कि कैसे इस बीमारी को मैनेज किया जा सके.
जी जी.
उसमें एक तो आपने बेड रेस्ट का बता दिया,
जी
गन्ने के जूस का बता दिया.
जी जी.
खाने पीने की और क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ जो बेहतर हो सकती
हैं? इसमें बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया जी. इसमें डाइट का बड़ा रोल है जी.
ठीक है,
जो खुराक है हमारी ग़ज़ा, वो उसका एक अपना ख़ास रोल है. इसमें यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा देने चाहिए इसमें.
अच्छा
जी, ग़ज़ा ऐसी देनी चाहिए इसमें फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़ज़ा देनी चाहिए. प्रोटीन से
डॉक्टर साहब, ये आलू वगैरह,
चावल आगे, स्टार्च. हाँ जी, हाँ जी,
स्टार्च जो है जिसको हम कह सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक है
जी. इसमें बाकी आ जाता है प्रोटीन जो है, ऐसी ग़ज़ा देनी चाहिए जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, फुल ऑफ प्रोटीन,
गोश्त वगैरह
होगी जी जी. पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
यानी कुल पेशेंट को दें जो जिससे मजबूती आए
उसको. हाँ, मजबूती भी आए, उसमें एक स्ट्रेंथ सी आए.
ठीक है
जी. उसके साथ आपने इनको मल्टी वाइटामिन का एक बड़ा खास रोल आ जाता है इसमें जी.
ठीक है,
मल्टी वाइटामिन में आप बी कॉम्प्लेक्स उनको दें जी.
ठीक है,
बी कॉम्प्लेक्स के साथ आप विटामिन के जो है, विटामिन के का अपना रोल है,
ठीक है,
वो दे दें जी.
ठीक है,
तो दिस इज द. और दूसरे नंबर पे इसमें साथ आप IV जो ड्रिप है ग्लूकोज की 10% वो लगा सकते हैं. अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है उस जो एनोरेक्सिक पेशेंट है जिसको भूख नहीं लगती थी, बेहाल हो चुका है, ज़ईफ़ हो चुका है, वीक हो चुका है,
कमज़ोरी,
उसको आप 2 लीटर तक वो ग्लूकोज दे दें 10% यानी 2000 ml तक,
ठीक है,
तो पेशेंट अपनी वो डिहाइड्रेशन उसकी इम्प्रूव हो जाएगी।
कैसे बचा जाए इस बीमारी से डॉक्टर?
हाँ, इससे बचने के लिए ये है कि आप इसकी जो प्रिवेंशंस हैं, प्रिवेंशंस के या इसकी कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं जो हर बंदा घर बैठ के भी कर सकता है, वो ये है कि घर बैठ के या अपने अपने उस एरिया में, अपने उस इलाके में दूसरे लोगों को आगाह कर सकता है। कुछ इसकी जनरल मेजरमेंट्स हैं, कुछ इसकी स्पेसिफिक मेजरमेंट्स हैं। जनरल मेजरमेंट्स में यही आता है कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो इसका सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसको शुरू में ही हमें कंट्रोल करना चाहिए, जहाँ से ये आ रहा है। वो ये है कि सबसे पहले मैं आइडियन से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा जी कि जब हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं जी, ठीक है जी, टॉयलेट वगैरह अटेंड करते हैं, तो उसके बाद हमें हाथ जो है ना वो डेफिनेटली, या कोई भी पेशेंट है उसको धोने चाहिए जी, लिक्विड से धो ले, साबुन से धो ले, ठीक है, तो वो काफी इफेक्टिव होगा पेशेंट के बेनिफिट में, होगा उसको फायदा पहुंचेगा।
सफाई सुथराई होना वो भी मुतालिक जो है वो उन चीजों का ख्याल बहुत
जी, उसका सफाई होना बहुत जरूरी है, पेशेंट का हाथ धोना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, टॉयलेट की सफाई इसलिए जरूरी है, कुछ ऐसे वायरस हैं जो अटैक करते हैं डायरेक्ट जी पेशेंट,
सही है जी, सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को जारी रखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और जो है नाज़रीन, आप लोग जो है डॉक्टर जावेद हुसैन अख्तर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बात हम लोग उनके साथ कर रहे हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में, और उन्होंने कहा कि टॉयलेट की सफाई सुथराई बहुत ख्याल रखें, खास तौर पे जो पब्लिक टॉयलेट, जो बाहर घर से बाहर टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो है बहुत ख्याल रखें। चलते हैं हम लोग हसन के पास, देखते हैं हसन भी जो है आज हमारे लिए कुछ जो है मज़ेदार किस्म की चीज़ें लेके आए। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। एक तो एजाज हुसैन साहब ने कराची बुलाया, कराची जाना है आपको?
जी चलते हैं,
चलते हैं, चलें अभी प्रोग्राम के बाद। हम लोग प्रोग्राम के बाद बस निकल रहे हैं, आप लोग तैयार हो जाएं। और उन्होंने हमारे बारे में पूछा था और बहुत ही मोहब्बत जाहिर की है कि हम नहीं थे बीच में, तो बहरहाल हम सफर पे थे 1 महीने।
और साहब ने कहा था कि हसन जैदी के बगैर प्रोग्राम जो है ऐसा जो म्यूट हो गया।
वाकई?
हाँ जी बिल्कुल,
यानी आप लोग कुछ नहीं बोलते थे?
मैं जो है मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा बहुत शुक्रिया, मैं इतनी बातें करता हूं।
रोब इसको कहते हैं कि मैं न भी हूं तब भी कोई कुछ नहीं बोल पाता। देखिए बताइए, आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, हम जो चीज हम लेके आए हैं वो बहुत ही मजेदार है, आप लोगों के लिए यकीनन बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी। एक तो अगले कहा जाता है कि यानी जो सदियां आएंगी उसमें ज़िंदगी इंसान के लिए इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो सावाना कॉलेज ऑफ आर्ट्स ने एक काम बहुत ज़बरदस्त किया है, उसके तालिब इल्मों ने एक यानी बहुत ही ज़बरदस्त तरकीब उन्होंने अपनाई है इस लिहाज से कि आप कैसे रहेंगे अगले 100 साल में। जगह बहुत कम होगी, इंसानों की तादाद कहा जाता है कि 10 अरब से ज़्यादा हो जाएगी, तो जगह की किल्लत, पानी का मसला, हवा का मसला और बहुत सारी दीगर चीज़ें। उन्होंने क्या किया कि एटलांटा में एक पार्किंग लॉट में एक हिस्सा उन्होंने मुकर्रर किया एक गाड़ी की जगह पार्क करने की, या उससे आप समझिए कि 2 से 3 गाड़ियां, बहुत ज़्यादा उन्होंने यही रखा है। इसमें हर वसीला मौजूद है जो आपके आसानी के लिए घर में मौजूद होता है, लेकिन इसी जगह में और बहुत ही महदूद जगह में, यानी खाने पीने का सारा इंतज़ाम है, हर चीज़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा सोफ़ा है। वैसे $40,000 इन लोगों को लगे हैं इसको डेकोरेट करने में, लेकिन आप कम में भी कर सकते हैं, इन्होंने कहा है और यकीनन इसी तरह होगा। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये तमाम खूबसूरत चीज़ें जितनी आपको दिख रही हैं इस कमरे में सारे मुख्तलिफ रिसाइकल चीज़ों से बनी हैं। और एक और इसमें ख़ास बात ये है कि जो पूरा पानी का जो इंतज़ाम है इस घर में वो इस तरह से है कि पूरा पानी जो है वो फिर से रिसाइकल होता है, और जो बिल्कुल ही काबिल इस्तेमाल न हो वो हिस्सा जाता है पौधों को पानी देने के, वो भी किसी हद तक सफाई उसकी हो जाती है और फिर वो जाता है पानी को साफ़ करने के लिए, वो पानी देने के लिए पौधों को, और इसी तरह बाकी जो इस्तेमाल होते हैं एक बिल्डिंग के आम तौर से जो इस्तेमाल होते हैं पानी के वो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। और एक और ख़ास काम जो किया गया है इस पूरे बिल्डिंग में जो तकरीबन 4 मीटर से 3 मीटर में है, कि ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक काम किया गया है, और डेकोरेशन भी उसी लिहाज से है। और जैसा कि मैंने कहा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि सब चीज़ें रिसाइकल्ड हैं, हम लोग को सोचना चाहिए आज से कि हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना रिसाइकल यानी चीज़ें अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि आगे जाके हम लोग को आदत हो जाए ना, आगे जाके हम लोग को बहुत परेशानी पेश आ सकती है। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक बहुत अहम मौजू आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। बाहर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये मौसम, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होती है, बहुत ही खुशगवार मौसम होता है। यकीनन आपके लिए भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें एक और मसला होता है। आम हालात में हम लोग थोड़ा बहुत कैलूला कर लेते हैं और बाकी अपना काम वाम करते हैं, लेकिन बाहर में मौसम ऐसा हो जाता है कि कैलूले के बीच थोड़ा बहुत काम हो जाता है। तो ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ही अहम है इस लिहाज से कि हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम लोगों की नींद जो है वो बाहर में हर वक्त नींद आती रहती है। अगर आप ये महसूस करें वो अजीब सी एक यानी मुरझाया हुआ आदमी जा रहा होता है, एक अजीब कैफियत उस पर तारी होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकती है। ये सिर्फ इंसानों में हत्ता नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ जानवरों में भी ये कैफियत देखी गई है कि मौसम तब्दील होने के साथ साथ यानी जो आप कह सकते सर्दियों से जब बाहर आती है, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं बाहर आती है, तो उसमें हर जानवर जो है वो भी परेशान हो जाता है, इंसान भी बहरहाल अगर उसको हैवान नातिक जिसे कहा जाता है वो भी परेशानी का शिकार हो जाता है। लेकिन इससे दूरी कैसे की जा सके, बहुत सारी एक तो बताऊँ मैं कि चीन में यिन कहते हैं बाहर को और यांग कहते हैं, बहरा ख़ास तलफ़ुज़ होगा अपना होगा मुझे नहीं मालूम वो तलफ़ुज़ क्या है, वो सर्दियों को, और उसी के हिसाब से खाना पीना होता है। तो यिन में कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सब्जियां इस्तेमाल करें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसी तरह आप एक काम जो कर सकते हैं वो ये है कि तली हुई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, प्याज से कोशिश करें कि दूरी करें, और ये सारी चीज़ें बायस होंगी कि आपका बदन बिल्कुल तरोताज़ा हो और आपको नींद ना आए, कम से कम उसमें मदद करेगा। कोशिश करें अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है दिन में थोड़ी देर सो लें, लेकिन रात की अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि अगर रात की आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में ख़ास किस्म का जो माहौल होता है उसकी वजह से आपको नींद आएगी और आप एक आपको बहाना मिलेगा काम ना करने का। ये मेरे ख्याल में प्राइवेट कंपनियों के लिए गैर मुफीद साबित हो सकता है। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भरपूर तरीके से कोशिश करें कि मछली और फलों का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है आपके लिए। सुबह को कोशिश करें कि जहाँ तक आपके लिए मुमकिन हो आप ऑरेंज जूस यानी जो संतरे का जो जूस होता है वो इस्तेमाल करें, विटामिन सी आपको तरोताज़ा रखने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। चलते हैं खुर्रम के पास।
बहुत शुक्रिया हसन जी, बिल्कुल बड़ी दिलचस्प जो है आपने बातें बताई, और डॉक्टर साहब वक्त महदूद है हमारे पास। डॉक्टर साहब एक तो खारिश का बताएं कि हेपेटाइटिस में खारिश का सुना बहुत ज़्यादा
जी होती है। मैं मेडिकेशन में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये मोस्टली यही पेशेंट हमारे सवाल करते हैं जी। मेडिकेशन में ये कि सबसे पहले तो हमने मेडिसिन ज़्यादा नहीं देनी,
ठीक है
अवॉइड करना, उससे बचना हमने, क्योंकि कुछ बहुत सी मेडिसिन ऐसी जो लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं और लीवर पहले ही डैमेज होता जा रहा है,
ठीक है सही।
तो उसमें यह है कि हत्ता पैरासीटामोल भी आपने अगर पैनाडोल जिसको हम बोलते हैं देना है तो वो भी बड़ा एहतियात के साथ आपने उसको देना
ठीक है।
दूसरे नंबर पर जिस तरह आपने खारिश का क्वेश्चन किया है, मोस्टली पेशेंट कहते हैं जी मुझे खारिश हो रही है, खारिश के लिए आप लोकल जो टॉपिकल लोशन भी है जिसको हम कैलामीन लोशन कहते हैं जी, कैलामीन लोशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई उसको साथ ओरल देना चाहते तो वो क्लेस्टेरामीन है जी, वो 4 मिलीग्राम जो है TDS वो दिन में 3 बार आप उसको वो दे सकते हैं जिससे खारिश कंट्रोल हो जाएगी,
ठीक है सही। तो ये खारिश जो है कंट्रोल कर इसी लोशन का
अल्हम्दुलिल्लाह।
कोई डॉक्टर कॉम्प्लिकेशन है इसमें?
हाँ कॉम्प्लिकेशंस मैं खिदमत में अर्ज करूँ इससे पहले कि वो जनरल मेजरमेंट्स में रह गया था जी, स्पेसिफिक जो मेजरमेंट्स हैं उसमें ये है कि आपको उसकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए जी, ठीक है। जो लोग पुअर ट्रैवलर होते हैं जो पुअर एरियाज की तरफ जा रहे हैं, हाइजीनिक पुअर एरियाज हैं, उनको वैक्सीनेशन होनी चाहिए उनकी,
ठीक है ठीक है। हाँ,
और साथ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो आप उनको दे सकते हैं जी,
ठीक है
तो वो बेटर हो जाएगा
सही ठीक।
बाकी क्वेश्चन आपने माशाल्लाह कॉम्प्लिकेशंस का किया, वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह है कि जो हिपेटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं रिलेटेड टू लीवर, जिगर से मुतालिक जो हैं, उसमें कोई इतनी वो एक जो आती है वो भी उसका चांसेस लेस देन 1% है जी, वो है फुलमिनेंट हिपेटिक फेलियर आ जाती है उसमें जी, उसमें भी वो भी इसमें यही आता है कि उसमें जिगर इन्वॉल्व हो जाता है जी।
हाँ सही, जिगर की मुख्तलिफ किस्म की जो मुश्किलात हैं वो हमें देखने को मिलेंगी
जी जी
सही।
और इसके साथ जो एक्स्ट्रा हिपेटिक जो हैं जो ज़्यादा वो भी कहते हैं रेयर हैं लेकिन होती हैं, क्योंकि मेडिसिन लीवर में मेटाबोलाइज होती है लीवर ख़राब कर रहा है जी, उनमें ये आता है रीनल फेलियर हो सकती है उसमें, हाँ बिल्कुल जी हो सकती है, शोग्रेन सिंड्रोम हो सकती है उसमें, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो मुख्तलिफ फील्ड से रिलेटेड है, साथ उसमें گلین بارس سنڈروم ہو سکتی ہے جو اس میں ریڈ بلڈ سیل ایپلیزیا ہو سکتا ہے اس میں, ٹھیک ہے جی, اور بہت سی ایسی ہیں ڈیزیز, پینکریاٹائٹس ہو سکتا ہے جس میں جو ہمارا لب ہے اس میں انفلیمیشن آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اور بہت سی کمپلیکیشنز ہیں, اس لیے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم شروع میں ہی سورس آف کانٹیکٹ کو کنٹرول کر لیں, ہاتھ وغیرہ دھوئیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مفید آپ کے ساتھ گفتگو رہی, ان شاء اللہ جو ہے ہم لوگ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کو دعوت کریں گے اور مختلف موضوعات پہ ان شاء اللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. جی حسن,
بہت بہت شکریہ خرم اور ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ہم لوگوں کا رابطہ دہلی اسٹوڈیو سے پتہ نہیں ہمارے ساتھی بتائیں گے ہوا ہے نہیں ہوا ہے, تو جب تک چلتے ہیں ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو نکلنے کا موقع دیتے ہیں. جی ناظرین, پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام صبح زندگی میں. 8:14 ہو رہے ہیں تہران کے وقت کے مطابق اور ہمارا رابطہ ہو گیا ہے دہلی اسٹوڈیو سے.
بالکل جی, ڈاکٹر عطیہ نشاد ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر عطیہ نشاد, آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر صاحب, بچوں میں خون کی کمی کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو کریں گے, کیوں ہو جاتی ہے بچوں میں خون کی کمی؟
دیکھیے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس میں بہت سے پہلو ہیں, تو اس کو ہم سب سے پہلے تو میں بتاتی ہوں کہ بریک کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں میں خون کی کمی ہوتی کیوں ہے. دیکھیے جب بچے بورن ہوتے ہیں تو آلریڈی ان کے جسم میں آئرن موجود ہوتا ہے بہت سارا, تو ایز سچ انہیں خون کی کمی نہیں ہوگی اگر انہیں بریسٹ فیڈ کرایا جائے کم سے کم ایک سال تک.
صحیح ہے.
لیکن اگر بچے کو بریسٹ فیڈ نہیں مل رہا ہے تو اکثر ان میں آئرن جو ریزروائر جو بولتے ہیں, یعنی پہلے سے جو جسم میں آئرن موجود ہے, وہ گھٹنے لگتا ہے دھیرے دھیرے. اور خاص کر جو بچے گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں, بہت سے گھرانوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گائے کا دودھ بہت اچھا ہے اور بھینس کے مقابلے یہ بچوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا, جبکہ اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے. گائے کا دودھ نہ صرف آئرن ڈیفیشینٹ ہوتا ہے, اس میں آئرن کم ہوتا ہے, بلکہ اگر بچے کو کہیں اور سے بھی آئرن مل رہا ہے تو اس کے ابزارپشن میں, یعنی اس کے جسم میں پہنچنے میں بھی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اور دوسری بات, ان بچوں میں بھی آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جو ایسا فارمولا فیڈ لیتے ہیں, یعنی نہ وہ گائے نہ بھینس اور نہ ہی بریسٹ فیڈ لے رہے ہیں, لیکن فارمولا فیڈ لے رہے ہیں جس میں آئرن فورٹیفائڈ نہیں, یعنی وہ آئرن اس میں زیادہ نہیں موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی ایک سال کے بچوں میں آئرن ڈیفیشنسی. دوسری بات یہ کہ جو ایک سال سے دو سال کے بیچ کے بچے ہیں جن میں آئرن ڈیفیشنسی یا انیمیا جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, وہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بچے اکثر چلنے لگتے ہیں یا زمین پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ اکثر مٹی کھاتے ہیں یا گندے ہاتھ منہ میں ڈالتے ہیں, تو اس سے ان میں ہک وارم انفیسٹیشن ہو جاتا ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پیٹ میں کیڑا پڑ جانا.
ٹھیک ہے.
تو اگر بچے کے پیٹ میں کیڑا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر ایک ہک وارم ہے اس کے جسم میں تو وہ روز پورے دن میں 2 ملی لیٹر خون بچے کا چوس لیتا ہے, یعنی لے لیتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ اس کے جسم میں ہک ورم ہے تو وہ کس قدر اس کا خون جسم میں کم ہو جائے گا. تو یہ دو تین خاص وجہ ہیں جس میں بچوں میں عام طور پہ انیمیا ہوتا ہے, اور وہ بھی آئرن ڈیفیشینٹ انیمیا جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے.
صحیح, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر عطیہ نشاط, ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ کیسے پہچان کی جائے کہ بچے میں جو ہے خون کی کمی ہو رہی ہے.
دیکھیے یہ بہت آسان ہے. سب سے پہلے تو اگر بچہ بہت زیادہ روتا ہے, اکثر تو بچوں کو جیسے پیٹ درد ہے یا پیٹ بھر نہیں رہا ہے یا کان کی تکلیف کی وجہ سے بچے روتے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بچہ تو دودھ بھی صحیح سے پی رہا ہے یا کھانا اگر وہ کھاتا ہے تو بھی کھا رہا ہے اور اس کے باوجود وہ اریٹیبل ہے, یعنی روئے جا رہا ہے, تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے سر میں درد ہے یا وہ ان جنرل چڑچڑے پن کا شکار ہے, تو اس کی بہت بڑی وجہ انیمیا ہوتی ہے. آپ بچے کے خون کی جانچ کرائیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آسان طریقے ہیں دیکھنے کے کہ بچے کو انیمیا نہیں ہے. آپ اس کی آنکھ سے اس کی جانچ کر سکتے ہیں. آنکھ میں کو آپ جب کھینچتے ہیں یہاں سے تو آپ تو دیکھیں گے کہ جو ہیلدی بچہ ہے اس میں سرخ रंग की दिखती है ये जगह, लेकिन अगर आपके बच्चे में अनीमिया है तो वो ब्लूइश हल्का सा नीले रंग का या सफ़ेद रंग का दिखेगा, तो ये बहुत ख़ास पहचान है अनीमिया की। दूसरे बच्चे की स्किन जो जिल्द है वो बजाय गुलाबी या सुर्खी माइल होने की वो पेल दिखेगी, यानी पीली या सफ़ेदी माइल दिखेगी, तो इससे भी पता चलता है कि बच्चे में खून की कमी है, नाखून उसके सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगे बजाय सुर्ख या गुलाबी दिखने के। और एक बहुत आसान सी जाँच होती है, अगर ये आप नहीं कर सकते तो ये आप करके देखिए कि बच्चे की कलाई को थोड़ा सा ज़ोर से दबाएं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, थोड़ा सा दबाव डालें तो आपकी उंगलियों के निशान बनने चाहिए, सुर्ख रंग के, इसको रेड बैंड बोलते हैं, वो बनने चाहिए। अगर आपके बच्चे में हीमोग्लोबिन यानी आयरन डिफिशेंसी नहीं है तो बिल्कुल साफ उंगलियों के निशान दिखते हैं, अगर वो नहीं दिख रहे हैं तो भी इसका मतलब है कि आपके बच्चे में अनीमिया है यानी आयरन डिफिशेंसी है और उसको खून की कमी है।
डॉक्टर साहब, नुकसानात क्या पहुंच सकते हैं अगर इसका यानी सही तौर से तशखीस नहीं दी जाए, तो इसके क्या नुकसानात हैं बच्चों के लिए?
देखिए मैं आपको बताऊं कि अनीमिया जब होता है तो हमारे जिस्म में खून की कमी होती है और वो खून है रेड ब्लड सेल, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन पूरे जिस्म पे सप्लाई करता है वो रेड ब्लड सेल जिस्म में कम हो जाए। अब आप ये सोचिए कि अगर बच्चे के जिस्म में हीमोग्लोबिन कम है तो जाहिर सी बात है उसके सारे जितने ऑर्गन्स हैं बॉडी के अज्जा हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, यानी उसका दिमाग जिस कदर तेज चलना चाहिए वो नहीं चलेगा, या उसके फेफड़ों में जिस कदर एनर्जी होनी चाहिए वो उसको नहीं मिलेगी, तो उससे बहुत से नुकसान होते हैं। सबसे पहले अब जैसे 1 साल 2 साल का बच्चा है तो उसके चिड़चिड़ापन है, या वो आप उसको कुछ सिखा रहे हैं या याद कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको इस चीज़ में भी परेशानी आएगी। अक्सर बच्चे तो बिल्कुल सीधी सी बात भी जैसे कलमे वगैरह हम सिखाते हैं बच्चों को, 1-2 साल के बच्चे नहीं याद कर पाते, नहीं सीख पाते, यानी उनको कंसंट्रेशन के साथ साथ उनके जो जहन है उसमें भी डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, और जब वो खेलता है भागता है दौड़ता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, रोने लगता है, या अगर 3 साल का बच्चा है 4 साल का बच्चा है तो आप देखेंगे कि उसकी सांस फूल रही है, यानी वो तेज तेज सांस ले रहा है। जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन पूरे जिस्म में प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है तो हर जितना उसके ऑर्गेनिज्म है बॉडी के वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एकदम सीधा नुकसान है जो बच्चे को पहुँचता है। और लॉन्ग टर्म में यानी आगे चल के यही नुकसान और ज़्यादा जाहिर होने लगते हैं, यानी वो स्कूल में ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, उसके मार्क्स ठीक से नहीं आएंगे, वो क्लास में अटेंटिव नहीं रहेगा, यानी टीचर कुछ समझा रहे हैं तो उसको ध्यान से नहीं सुनेगा,
बहुत
ये सारी परेशानी आती है अनीमिया होने की वजह से।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। इसके हम जो इलाज या कह सकते हैं कि सही तौर से उसका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए उसके बारे में अगले हफ्ते हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वक्त बिल्कुल नहीं है, प्रोग्राम बस खत्म हो रहा है। और
मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर आतिया निषाद का कि उन्होंने हमें दिल्ली से ज्वाइन किया, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताते चलूँ कि अगले हफ्ते का मौजू जो हसन हमारा होगा वो खवातीन की अहमियत, उनका किरदार एक माशरे में, पूरा हफ्ते जो है हम इस मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और हफ्ते के दिन हमने जो है साबरा कांजी साहब जो माहिर नफ्सियात हैं उनको दावत दी है अपने प्रोग्राम में, और वो भी
इस मौजू के बारे में बात करेंगे, और नफ्सियाती लिहाज से बहुत अहम किरदार है खवातीन का हमारे माशरे में। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे करीबी लम्हा खुदा से कौन सा लम्हा होता है, तो उन्होंने कहा सजदे का, और उसमें दुआएं कबूल होती हैं। इस मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए।